नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जैसलमेर में हुए बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हुई। झुलसे हुए 5 लोगों की हालत नाजुक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर से उत्तर पश्चिम रेलवे के 65 स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। अंता उपचुनाव के लिए मतदान केंद्रों को सुगम बनाने के निर्देश। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को वोट डालने में प्राथमिकता दी जाएगी। और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की योजनाओं के तहत पूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 2 गुना वृद्धि को मंजूरी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। जैसलमेर में एक निजी बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हो गई है। हादसे में झुलसे 10 साल के एक बालक ने सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर के प्रशासन के अनुसार झुलसे हुए 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच शवों की पहचान के लिए जोधपुर और जैसलमेर के अस्पताल में DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। प्रशासन के अनुसार ज्यादातर मृतक जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के जिलों के हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जैसलमेर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इस बीच शवों की पहचान के लिए DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। DNA सैंपल कलेक्शन को लेकर अस्पताल अधीक्षक जोधपुर ने बताया कि अधिकतम 24 घंटों में शवों की पहचान की प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी। जिला प्रशासन जोधपुर और जैसलमेर ने बताया कि आगजनी दुर्घटना में नहीं मिल पा रहे मृतकों की पहचान के लिए उनके 2 निकटतम परिजनों से DNA सैंपल लिया जाएगा। इस उद्देश्य से महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर के कोटे संख्या 4 और 5 में और जैसलमेर स्थित जवाहर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में विशेष व्यवस्था की गई है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
इस बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों के उपचार के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जांच के तथ्य सामने आने के बाद इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हादसे में मृतक के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाना में FIR दर्ज कराई है। गौरतलब है कि कल दोपहर जैसलमेर से जोधपुर की तरफ जा रही एक निजी बस में AC में शॉर्ट सर्किट के बाद भीषण आग लग गई थी। हादसे में 19 लोगों की मौके पर ही जलकर मृत्यु हो गई। केंद्रीय रेलवे सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव 1 दिन के दौरे पर कल जयपुर आ रहे हैं। वे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर जयपुर अहमदाबाद असारवा ट्रेन में AC श्रेणी के यात्रियों के लिए लिनन कंबल कवर की नई व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे के 65 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री कुछ अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी भाग लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी है। इसमें 15 से ज्यादा देशों के 450 से ज्यादा प्रदर्शक आधुनिक रेल और मेट्रो उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि इसे आधुनिक बनाने के लिए रेलवे फिलहाल हर साल 2,56,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस अवधि के दौरान लगभग 35,000 किलोमीटर के ट्रैक बनाए गए और 46,000 किलोमीटर के रेल ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में भी उभर रहा है और हाल ही में भारत में निर्मित इंजन को अफ्रीका को निर्यात किया गया। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आज उनकी जयंती पर याद किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया संदेश में उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर कलाम को दूरदर्शी वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता और एक सच्चा देशभक्त बताया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षा, विज्ञान और युवा सशक्तिकरण में उनके अथक प्रयासों ने भारत के आत्मनिर्भरता के मार्ग को सुदृढ़ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर कलाम दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने युवाओं और समग्र राष्ट्र को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया।
कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है और मुझे विश्वास है कि अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है उसे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी मतदान केंद्र पूरी तरह से सुगम बनाए जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि सभी केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर होंगे और वहां रैंप उपलब्ध होंगे। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को वोट डालने में प्राथमिकता दी जाएगी। दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लक्षणों वाली सूचना पर्चियां जारी की जाएंगी और मतदान केंद्रों पर ब्रेल डमी बैलेट शीट भी उपलब्ध होगी ताकि वे स्वतंत्र रूप से वोट डाल सकें। दिव्यांग मतदाताओं के लिए परिवहन सुविधा भी उपलब्ध होगी जिसके लिए उन्हें आयोग के सक्षम मॉड्यूल पर पंजीकरण करवाना होगा। इस बीच उपचुनाव के लिए आज 2 नामांकन पत्र और भरे गए हैं। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने आज दोबारा से अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले हुई नामांकन रैली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। गरीबी अनुदान को प्रति लाभार्थी 4,000 रूपये से दोगुना करके 8,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इससे 65 साल से अधिक आयु के वृद्ध और गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं जिनकी कोई नियमित आय नहीं है उनको आजीवन नियमित सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि 2 आश्रित बच्चों तक के लिए शिक्षा अनुदान को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 2,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। विवाह अनुदान भी प्रति लाभार्थी 50,000 रूपये से बढ़ाकर 1,00,000 रूपये कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित दरें इस साल 1 नवंबर से प्रस्तुत आवेदनों पर लागू होंगी। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में समावेशी आजीविका योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक समाराम गरासिया और जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने भी शिरकत की। इस अवसर पर पिंडवाड़ा ब्लॉक के विभिन्न गांवों की 1,000 महिला प्रधान परिवारों को उपभोग सहयोग राशि के रूप में 5,912 रूपये सीधे महिलाओं के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए। गौरतलब है कि समावेशी आजीविका योजना राजस्थान के 3 जिलों के 4 ब्लॉक्स में चलाई जा रही है। इसमें सिरोही जिले का पिंडवाड़ा ब्लॉक भी शामिल है। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज संयुक्त राष्ट्र ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर डीग की उन ग्रामीण महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए जिन्होंने राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी और अपने परिवार की आर्थिक हालत मजबूत की है। जिले में अब तक 19,744 लखपति दीदी बन चुकी हैं जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 रूपये से ऊपर है। महिलाओं ने बताया कि लखपति दीदी योजना और स्वयं सहायता समूह से जुड़ने पर उन्हें स्वरोजगार के लिए सस्ते ऋण मुहैया हुए हैं।
मेरे समूह का नाम काजल राजीव बैसर जी है और ग्राम संगठन का नाम नमो शिवाय है। मैं पहले एक गृहिणी थी, उसके बाद जब मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी उसके बाद मैंने अपनी आजीविका के लिए सबसे पहले बैंक सखी की ट्रेनिंग की। बैंक सखी का कार्य मैं आज भी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एमटी की ट्रेनिंग की। एमटी से मैं लखपति जो दीदियाँ होती हैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ। उनको लखपति दीदियों को ये समझाया जाता है ट्रेनिंग में कि आप कैसे अपने रोजगार चला सकती हैं, कैसे आप बैंक से लोन ले सकती हैं और किस प्रकार से आप लखपति बन सकती हैं, आप अपने पैरों पर आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर जालौर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र केशवना पर संस्थागत प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें 32 महिलाओं ने भाग लिया। कोटपूतली बहरोड में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आज राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम और पोषण मेले का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने इस मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पोषण माह मनाने का उद्देश्य पोषण को जन आंदोलन बनाना है।
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के जो 5 इनके थीम्स थे उसमें से एक पोषण का भी था। पोषण माह के अंदर जितने भी कैंप्स हुए हैं ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर सब में इन्होंने आयोजित किया। जितनी भी रेसिपीज हैं उसको इन्होंने प्रदर्शित की। इसको प्रदर्शित करने का ये फायदा होता है कि जो हमारी माताएं बहने हैं इन कैंप्स में आ रही हैं या अपने जो लोग भी आ रहे हैं वो ये देख सकें कि किस तरह से हरी सब्जियां साग, किस तरह से मोटा अनाज जिसको हम श्री अन्न कहते हैं उसका किस तरह से प्रयोग करके हम लोग एक हेल्दी फूड की तरफ हम जा सकते हैं।
प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आज सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने पालड़ी मीणा में एक कारखाने से 100 किलो मिलावटी पनीर नष्ट करवाया। पहले भी इस कारखाने पर कार्रवाई के दौरान लिए गए नमूने अमानक पाए गए थे। परिसर में गंदगी और अनहाइजेनिक तरीके से पनीर तैयार किया जा रहा था। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इस कारखाने से पनीर निर्माण पर अग्रिम आदेशों तक पाबंदी लगा दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जैसलमेर में हुए बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हुई। झुलसे हुए 5 लोगों की हालत नाजुक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर से उत्तर पश्चिम रेलवे के 65 स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। अंता उपचुनाव के लिए मतदान केंद्रों को सुगम बनाने के निर्देश। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को वोट डालने में प्राथमिकता दी जाएगी। और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की योजनाओं के तहत पूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 2 गुना बढ़ोतरी को मंजूरी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।